ಕೃತನವದ್ವಂದಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಧರಾಕರೀಶವಂದೇ ನಂದಾತ್ಮನಃ ನಮಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತಗುಹೇ ನಮಃ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಿಮರ್ದನಂ ದಯ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ವಂಶೀವಿಭೂಷಿತಕರಾನ್ನವನೀತಿರಾಭಾತ್ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಸುಂದರ ಮುಖಾದರವಿಂದನೇತ್ರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ತತ್ವಮಹಂ ಜಾನೇ ಹರಿ ಓಂ ನಮೋಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಸ್ತೆ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
अब थोड़ी सी कृपा करें फिर सुने बातें मेरे मन में इतनी बातें आ रही है तो कैसा डरता हूं लोग कहे कि स्वामी जी एक ही बात कहो मैं सुन जवाई को नहीं अरे पाप छुड़ा जैसे थी मैं नहीं जाऊं मारे राम 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 पाप छुड़ा देगा कोई तो बड़े गजब हो जाएगा नरकों में कैसे जाएंगे 84 लाख जूनी में कैसे जाएंगे हमारे महान घोर नरकों में हम कैसे जाएंगे वहां वो तो पाप छुड़ा देंगे इस बात हम जाते ही नहीं सुनते ही नहीं ये दशा हो रही है क्या पता है? मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे अरे क्यों साथ कुशलात कर दी पर कुए पड़े ऐसे भयंकर भयंकर पाप है जिसको पता ही नहीं है आप जानते नहीं हो उस तरफ ख्याल नहीं है तो रोंगटे खड़े हो जाए आंखें डबडबावे हृदय दबित हो जाए तो राम 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 घोर अन्याय घोर पाप कर रहे हो आप कितना पाप कर रहे हो परंतु ख्याल ही नहीं है इधर पता ही नहीं है सबसे दुर्लभ मनुष्य देह बताया है मनुष्य शरीर है दुर्लभ हो मानुष हो देहो लब्धा सुदुर्लभे दुर्लभम प्रमेवे तत् दैवानुग्रह दुर्लभ मनुष्य शरीर है उस मनुष्य शरीर के आरंभ को ही खत्म कर देना काट देना कितना अन्याय है कितना जनता के साथ में जीवों के साथ में कितना घोर अपराध है कितना पाप है कहां तक कहूं भाई मेरे तो दुख हो रहा है मन में जलन हो रही है मतलब करें क्या बताओ आप सुनते वाले भी सुनने भी कहते हैं स्वामी जी वो बात सुना देंगे तो हम तो ससु भी नहीं जाएंगे पाप छुड़ा दे वहां कौन जाए बताओ हमारा घोर पाप नरकों में जाने का रास्ता बताया जाए वो हम नहीं जाएंगे वो नहीं सुनेंगे हमें तुम सुनो मत मेरे पास समाचार आए क्योंकि स्वामी जी को कह दिया है बात न करें ये बात करे ही नहीं ये सुनावे ही नहीं ऐसी शिकायत आई जिस मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उस मनुष्य शरीर को पैदा नहीं होने देना नष्ट कर देना कितना घोर पाप है कहां तक मैं कहूं मेरे समझ में नहीं आता इनकी हद क्या नहीं हिंदू आंख हद हो गई हिंदू संस्कृति जो सबसे श्रेष्ठ है और भविष्यवाणी में मैंने सुना है कहां तक सत्य है जो मैं नहीं जानता कि अंत में हिंदू संस्कृति ही रहेगी यही पनपेगी और यही सबको शिक्षा देगी पूर्व से ही सब प्रकाश आता है सबसे श्रेष्ठ प्रकाश इसमें आता है इसमें आएगा ऐसी बात होगी ये बात मैंने भविष्य वक्ताओं की परंपरा से बात सुनी है ऐसी पवित्र संस्कृति उसका नाश कर देना कितना घोर पाप है दुनिया मात्र जीवों के लिए उद्धार की बात है उस बात को सर्वथा बंद कर देना कितने बड़े भारी पाप की बात है क्या कहूं कैसे कहूं मैं कैसे कहूं कोई कहने का आता नहीं मेरे को ऐसी बात समझानी आती नहीं अधूरी बात है कहता हूं मैं पर तुम करूं क्या बताऊं ऐसे घोर पाप में लगे हैं कल्याण हो न जाए किसी का भी उद्धार न हो जाए दुर्लभ मनुष्य शरीर है वो शरीर न प्राप्त करे कोई पहले ही नष्ट कर देना है दवाया लेकर नष्ट कर देना है काट करके नष्ट कर देना है गिरा करके नष्ट कर देना है गर्भस्राव कर नष्ट कर देना है गर्भपात करके नष्ट कर देना है घोर भून हत्या करके नष्ट कर देना है हमारे पाप भले ही हो दुनिया को तो नरक में ले जाना ही है किसी को उद्धार होने नहीं देना है ऐसी कमर कस ली अब क्या कहूं मैं किसको कहूं हमारे साधुओं के लिए कहा गया है कि चातुर्मास में घूमो मत हम 2 महीना रहते हैं कई 3 महीना रहते हैं जैन 4 महीना रहते हैं एक छोड़ देते हैं फिरो मत। कारण क्या है कि फिरने से जो अंकुर है ना, चातुर्मास में वर्षा बरसती है तब हर एक बीज का अंकुर उगता है। अंकुर होकर के वो घास बनता है, बड़े होते वृक्ष बनते हैं, मन अंकुर बनते हैं। वे अंकुर वर्षा में उगते चलने फिरने से अंकुर नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से चलना फिरना बंद, साधु फिर नहीं भाई, हिंसा न हो जाए, किसी की हत्या न हो जाए, इसके लिए फिरो मत। हिंसा करना उनका उद्देश्य नहीं, पर चलोगे फिरोगे तो हिंसा काया जनी हया, भागवत माया है। हिंसा पर विजय करना हो तो शरीर की चेष्टा कम करो, काया जनी हया, इसकी अनिहा रखो, जिससे हिंसा पर विजय हो जाएगा आपकी। तो क्या नहीं करें कि घूमे फिरेंगे नहीं, दो महीना हम नहीं घूमे, सावन भादो महीने अंकुर बहुत निकलते हैं, जहाँ जाओ अंकुर नष्ट होते हैं। तो अंकुर वृक्ष होने वाला है और घास होने वाला है, अंकुर का नाश हो जाएगा। पंक्ति ज्यादा उगेगा क्या, दो पन्ना पान निकला, दो पन्ने भी पूरे नहीं निकले, ऐसे अंकुर हुआ, वो नष्ट हो जाएगा। तो कितनी हत्या हो जाएगी, कितने पाप हो जाएगा। स्थावर जीवों के लिए सज्जनों भाइयों बहनों कान देकर सुनो, मेरे मन में बहुत आती है, मैं कह तो सकता नहीं, परंतु अब जैसे भाप निकालता हूँ मेरे मन की। स्थावर जंग स्थावर है बिल्कुल, वृक्ष है, घास है, पौधे है, उनका अंकुर भी नष्ट न हो जाए, इसके लिए पारमार्थिक साधन करने वाले और व्याख्यान देने वालों के लिए भी कहते हैं कि तुम लोगों को सुनाओ तो दो महीना तो बैठे चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हारे चलने फिरने से अंकुर नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा। इसके लिए सब यात्रा बंद करके एक जगह रहते हैं, अंकुर नष्ट हो जाए। तो स्थावर जीवों के अंकुर नष्ट होने पर भी इतना विचार, जिसमें यात्रा तक बंद कर दी, और जंगम जीवों के नाश करने कितने जंगमों में भी सबसे श्रेष्ठ देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे मनुष्य शरीर का नाश करने के लिए उद्योग कर रहे हैं, क्या दशा होगी। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कसत यतति सिद्धेः, मनुष्य हजारों में कोई एक सिद्धि के यत्न करता है, मनुष्य में यत्न कौन करने वाले हैं। मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ, मैंने सुना है समझा है वैसा कहता हूँ, आप पूरा न माने। हिंदू संस्कृति ने जितना जीव के उद्धार के लिए उद्योग किया है, इतना किस संस्कृति ने किया है कोई बता मेरे को, फिर बता दे। कभी ईसाइया ने किया है, बौद्धों ने किया है, आपके यहूदिया ने किया है, कि पारसियों ने किया है, कि किस संप्रदाय जो है संप्रदाय मुख्य यही है, थोड़े हैं यहूदी है, कई पारसी है, कई ईसाई है, कई यवन है, मुसलमान है, कई हिंदू है। इनमें कोई संप्रदाय जीव के कल्याण के लिए आगे बढ़ी हुई कौन सी है आप देख लो। जिस कल्याण के लिए बड़ी हुई संप्रदाय है उसके पैदा नहीं होने देना, नष्ट कर देना, पहले से ही रोक देना, सफा कर देना, कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना बड़ा भारी पाप है, घोर भयंकर कितना पाप है। वो पाप की बात सुनना नहीं चाहते, जो सुना हुआ तो जाएंगे नहीं, सत्य भी नहीं जाएंगे, ये बातें मैं सुनता हूँ। अरे आज सभ्यता हो गई, इतने बालक हो गए तुम्हारे, कम तो मनुष्य समाज में रहते हो, समाज समझते नहीं, समाज का अर्थ नरकों में चालो, जल्दी से जल्दी नरक करा, भयंकर से भयंकर नरक अपन भोगड़ा है, नरकों की याद लग जाए गजब हो जाएगा, ये दशा हो रही है, क्या कहें। किसी की भी उन्नति रोक देना क्या पुण्य है, आपकी उन्नति होती हो, आप बढ़ते हो, उनको रोक देना, नष्ट कर देना, उन नहीं बढ़ने देना, धनी होना चाहे धनी नहीं होने देंगे, धर्मात्मा होना चाहे धर्मात्मा नहीं होने देंगे, कल्याण करना चाहे कल्याण नहीं होने देंगे, शरीर में भी हृष्टपुष्ट हो तो हृष्टपुष्ट नहीं होने देंगे, शरीर में स्वस्थ हो तो स्वस्थ को भी नहीं रहने देना है, नष्ट कर देना है, क्या ये पुण्य है। आप थोड़ा सा विचार करो तो विधि समझ में आती है। अपना सुख सुविधा थोड़ा सा, उसके लिए दूसरे जीवों का इतना अनिष्ट कर देना, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जा सकते थे उनको जन्म नहीं देना, देना कितने बड़े भारी अन्याय की अत्याचार की बात है, कितने पापों की बात, घोर पाप की बात है। कहे तो कहे स्वामी जी एक ही बात दसी हुई, एक ही एक कहते हैं, मैं एक नहीं और भी बातें कहता हूं मैं, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम पापों से तो बचो। बजे सुनाया था ना सगा ने गिर सगा या लागी खेचा तान राबड़ी से नीचा वो तो इष्ट देवरी आन से जान जान करके घोर पाप तो मत करो अंधाता कृपा रखो इतनी तो आपके घरों का बालक हूँ आपसे ही पला हूँ आपसे ही पलता हूँ अभी भी आपसे ही निर्वाह होता है आप हो सब माँ बाप हो जरा कृपा करो थोड़ा जान जान करके महान घोर पाप महान बड़ा भारी अपराध जीवों की मुक्ति की तरफ चलने की इतनी बड़ी भारी आड़ लगा दे वो आप कितना घोर पाप करते हो जिसका क्या ठिकाना अपनी थोड़ी सी सुख सुविधा आराम उसके लिए बड़े भारी घोर भयंकर जब पापम ब्रह्म हत्या जो ब्रह्म हत्या को पाप लगता है दुगुणम गर्भगात पात में गर्भपात में दुगुणा पाप लगता है ब्रह्म हत्या से महापातक चार ही माना है उनसे दुगुणा पाप ये है प्रायश्चित न तस्यासी पाराशर स्मृति में लिखते है इसका प्रायश्चित नहीं है तस्यास्त्याग ऐसी कोई स्त्री हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए उसको अपनी स्त्री मान लेनी चाहिए जो कोई ऐसा स्त्री करती हो ये पाराशर स्मृति में लिखा है गर्भपात करने वाले स्त्री का देखा हुआ अन्न खावे तो पाप लगे देखे हुए अन्न पाप लगता है अरे जान जान करती है फिर प्रचार करती है अरे तू करते नहीं फिर इतना बालक हो गया तू करो क्या एक बुद्धि भ्रष्ट हुई है कोरो सुख सुविधा थोड़ी सी अरे यीशु चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो हम अनुमोदन करेंगे हमारी सृष्टि भले ही पैदा मत हो आप ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा की प्राप्ति कर लो आपको पाप नहीं लगेगा शरीर का तो नाश करना और संतान पैदा नहीं करना अब कहां तक करूं शर्म आवे जैसी बात है दुख जैसी बात है किसी की प्राणी का अनिष्ट करना है वह पाप है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचरित धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण कर लो अपने से प्रतिकूल किसी के प्रति आचरण मत करो आदेश लोग में जैसे ज्ञान की बात बताई श्लोकार्धेन प्रवक्ष्या में यदोक्तं ग्रंथ कोटि भी करोड़ों ग्रंथों से बताई वो मैं आधे श्लोक में बताता हूँ ब्रह्म सत्य में जगन में क्या जीवों को मैं बना पा रहा जीव ब्रह्म की एकता है और ये सबसे बढ़िया आधे श्लोक में बात बताई जो आधे श्लोक में बात भाई धर्म स्वरूप सुन लो दूसरे किसी का अनिष्ट मत करो जिन जीवों ने बेचारा जन्म लेना का शुरू किया कि मनुष्य जन्म में जाकर भजन ध्यान कर सकेंगे संभावना है कौन जीव कितना करता है क्या पता है उसका उनको रुकावट डाल देना पर जन्म ही नहीं लेने देना कितनी बड़ी भारी पाप की बात है हाँ आप ब्रह्मचर्य का पालन करो शरीर भी ठीक होगा सब ठीक होगा अरे वो पाप लगेगा नहीं भोगो तो भोगोगे पैदा नहीं होगा एक बड़ा भयंकर महान भयंकर पाप है अपने प्रतिकूल करते हो आपकी उन्नति कोई रोके आपका कोई जन्म रोक देवे आपका बढ़ना रोक देवे आपका पढ़ना रोक देवे आपका भजन ध्यान रोक देवे आप जिस इष्ट की प्राप्ति चाहते उसको कोई रोक देवे तो आपको पाप लगा पुण्य लगेगा आप जरा सोचो आपकी रोक दे उन्नति उसे क्या दोष लगेगा कि नहीं आपके अनिष्ट करता है उसका दोष लगेगा नहीं आत्मा ने प्रतिकूल आने परेशान न समझते चिंती है बेचारे छोटे छोटे जंतु है उसमें मार दू वे कर नहीं कर सकते कुछ भी परंतु क्या भगवान के न्याय नहीं है कि निर्बल को नष्ट कर देना कितना बड़ा भारी पाप है लड़ाई युद्ध होता है उसमें युद्ध में चेताओ पहले सावधान हो जाओ ओ सावधान हो जाओ मैं बाण चलाता हूँ महाभारत की कथा आप सुनो पढ़ो बैर है सावत में तो चेता देखे सावधान हो जाओ मैं मार मारता हूँ उसको भी सावधान करके अरे कर कोशेगा नहीं कोशिश उसका नष्ट कर देना वे बेचारे क्या कर सकते बताओ जीव जंतु क्या कर सकते है आपका अनिष्ट कुछ कर नहीं सकते अपना बचाव नहीं सकते ऐसे उनको नष्ट कर देना है कितना बड़ा भारी अन्याय है कितना बड़ा भारी पाप है कितना अत्याचार है कितना दुराचार है जरा सोचो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दो सज्जनों कृपा रखो ऐसा महान पाप करके नरकों में घोर नरकों में क्यों जाते हो किसी जीव का अहित करना है पाप करना है आत्मा ने प्रतिकूला ने साफ सूत्र लिख दिया कि आपको जो अनिष्ट चाहे आपका कोई अनिष्ट चाहे तो उसको आप नहीं चाहते हो आपका भला चाहे वो चाहते हो बुरा चाहे वो नहीं चाहते हो तो दूसरों के बुरा करने का आपको अधिकार क्या है वही पाप है और पाप का कारण क्या है तो भगवान ने बताया काम ऐसा क्रोध ऐसा कामना संग्रह की सुख भोग की सुविधा की आराम की जो इच्छा है भीतर में ये पापों का कारण है। गीता ने साक्षात बता दिया ये पापों का कारण है। खास किसी के भी सुख में बाधा मत दो, किसी की उन्नति में बाधा मत दो, किसी के जन्म में बाधा मत दो, किसी के भला होने के लिए बाधा मत दो, किसी के बढ़ने में बाधा मत दो। कोई धनी बन रहा है उसमें बाधा लगा देते हो, कोई विद्वान बनना चाहता है उसमें बाधा लगा देते हो, कोई भजन ध्यान कर अपना कल्याण करना चाहता है उसमें बाधा लगा देते हो, किसी के भी किसी तरह की भी उन्नति होती है उसमें बाधा लगा देते हो, ये सब पाप है। आत्मा ने प्रतिकूल जो आप नहीं चाहते औरों से, आपका गला काटे कोई, आपका नाश कर दे, आप कोई पीस डाले आपका नाश ही कर दे, क्या आप चाहते हो उस बात को? तो ये बात औरों के लिए मत चाहो। आत्मा ने प्रतिकूल परेशान न समाचरे, ये धर्म है, सबसे पहला धर्म ये है। सुविधाम धर्म सर्वस्व, सर्वस्व धर्म का तत्व सुन लो तुम। दूसरों की बाधा देते हो ये दो बड़ा भारी पाप है। दूसरों की उन्नति में, जन्म में, जिनकी वृद्धि में, वो बढ़ने में, ऊंचा चढ़ने में, उनमें बाधा देते हो और वे बेचारे जीव असमर्थ है, कुछ कर नहीं सकते। तो कुछ नहीं कर सकते उनके साथ अत्याचार करना है, ये भगवान को सही नहीं है। भगवान सर्वसम्मत है तो मात्र जीवों के शुद्ध होने के कारण से है, नाश करने की शक्ति नहीं है। प्रभु तुग कर्माना क्षया जगत, आज भी संपत्ति वालों को ये बताया है कि वे समर्थ होते हैं दूसरों का नाश करने में, समर्थ होते हैं दूसरों का अनिष्ट करने में। प्रभुवंती उग्र कर्माना क्षया जगत, जगत क्षया प्रभुवंती, वे समर्थ होते हैं दूसरों का नाश करने के लिए समर्थ होते हैं। तो दूसरों का नाश करने से महान असुर बताया है, राक्षस बताया है, असुर बताया है, गीता ने बताया है। पढ़ लेना गीता, फिर मेरे से सुन लेना भाई, गीता 16वां अध्याय सुन देख लो आप। किसी की भी उन्नति रोकनी नहीं चाहिए, किसी की भी वृद्धि रोकनी नहीं चाहिए। कोई धनवान बनता हो तो उस धनवान में बनने में बाधा मत दो, कोई विद्वान बनना चाहे तो विद्वान बनने में बाधा मत दो, कोई शरीर से बढ़ना चाहे तो उसको नाश मत करो, कोई भी जीना चाहे तो उसको मारो मत। जीवा हो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मारो तो मत भाई, नाश तो मत करो, हत्या तो मत करो। कम से कम, कम से कम, कम से जान जान करके हत्या करते हो। कैसे मूक जीव, जो जीव कुछ कर नहीं सकते, आपका अनिष्ट कर नहीं सकते, कुछ अपने बचा भी कर नहीं सकते, ऐसे असमर्थ का नाश कर देना कितना बड़ा भारी भयंकर पाप है। ऐसा पाप करते हो, ऐसा चाहते हमारा कल्याण हो जाए, कैसे हो जाए कल्याण? हम तो चाहते हैं कल्याण हो जाए, हम ऐसा नहीं करते कि आपकी दुर्गति हो जाए। मैं हृदय से चाहता हूँ आपकी सदगति हो, कल्याण हो, आपका उद्धार हो, परंतु बात है जो मैं क्या करूं, करूं क्या मैं?
महाराज जी, लोगों ने कहा है कि गर्भपात का तो पाप समझ में आता है, पर नसबंदी में पाप है या हत्या ही समझ?
मैं कहूँ पुण्य के कल्याण की बाधा ही कर देना, आरंभ में ही मार्ग रोक देना कितनी बढ़िया चीज है। क्या आप इतने बैठे हो, बता दीजिए, अभी बोल गए महाराज, आप भी बोल जाओ कि हिंदू संस्कृति जितनी अध्यात्म मार्ग में उन्नति बताती है, इतनी ईसाई संस्कृति बताती है, यवन संस्कृति बताती है, पारसी संस्कृति बताती है, यहूदी संस्कृति बताती है। आप खुला बोलो, कोई भाई बोल रहे तो इससे बढ़कर कोई ये चीज बताती हो? अध्यात्म उन्नति कोई बताती हो? आध्यात्म उन्नति के कोई इतना प्रशंसा करता हो? अपनी अपनी टोली बजाने में सब काम करते हैं, मुसलमान भी हमारी टोली बढ़े, ईसाई भी हमारी टोली बढ़ जाए, हमारा नाम ज्यादा हो जाए, हमारे संप्रदाय ज्यादा हो जाए, ये तो करते हैं, परंतु जीव का कल्याण हो जाए, उसका उद्धार हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। आप जो कहता खुली बात कहो, कोई भाई आओ साहब मेरे को बताओ, खुली बात कहो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। सभा के बीच में मेरी बात काट दोगे, मैं नाराज नहीं होऊंगा। बैरी का भी अनिष्ट नहीं करना। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर्ज जो करे भलाई। वो पन्ना मेरे पास तो नहीं मन किसी बार मिल जाएगा। कहते मूर्ति पूजा करे उसका, उसको मार दो, नष्ट कर दो। अभी दिल्ली में छापा छप करके प्रचार प्रसार किया गया, जो मूर्ति पूजा करे, मूर्ति जाके उनका मार दो, ऐसा कुरान शरीफ में लिखा है हमने, ऐसा पन्ना मैंने देखा। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। अब मूर्ति पूजा करे तुम्हारे पास है क्या लगी, तुम मत करो। कौन सा अन्याय करते हैं, कौन सा पाप करते हैं, कौन सा जुल्म करते हैं, किसका अहित करते हैं, किसका नुकसान करते हैं। कोई संप्रदाय ऐसा हो जो जीव के कल्याण की बात ही कहता हो, आप बताओ, खुली बात कहता हूं। उसकी संस्कृति रोक देना, आरंभ में नसबंदी कर देना, उनका घात कर देना, उसके लिए महाराज गर्भपात कर देना और ऑपरेशन करा लेना कि संतान पैदा ही न हो, परमात्मा की तरफ चलने वाला कोई जीव आ न जाए हमारे यहाँ संप्रदाय में, ऐसा काम कर देना, क्या पुण्य का काम है? आप बताओ कितना अन्याय, कितना अत्याचार है, कितना महान अत्याचार है जीवों की मुक्ति की तरफ जाते हुए को रोक देना कि कोई मुक्ति न हो जाए किसी की। और वे रुके हुए अगर मनुष्य मन प्रयास होने ही हो रहा है तो हिंदुओं में न होकर मुसलमानों में ईसाई में पैदा होंगे, वे पैदा होंगे हिंदुओं का नाश करेंगे, मनुष्य बनने वाला मनुष्य बनेगा। आप रोक दोगे तो क्या हो, मनुष्य नहीं बनेंगे, वो संख्या बढ़ेगी, और वो संख्या बढ़ क्या करेगी बताओ, आप सोचो बताओ। आप हमारे बहुत बढ़ जाए ये तो चेष्टा बहुत है, परंतु जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये चेष्टा भी है क्या? किस संप्रदाय में बताओ भाई, इतने बैठे हो जानकार हो, मैं विशेष जानता नहीं। यमुना में हो तो बताओ, ईसा में है बताओ, पारसी में है तो बताओ, यहूदियों में है तो बताओ, हिंदुओं में है कि सबका कल्याण हो। मात्र काम कल्याण करने वाला महान घोर युद्ध जिसमें गला काटा जाए, वो घोर युद्ध भी कल्याणकारी हो, ये गीता ने उपदेश होता है। भगत पर युद्ध भी करना पड़े, मारना पड़े, तो भी कल्याण हो, ये बात है। और जारखान के कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में किया, क्योंकि यहाँ मरने से कल्याण होता है। लड़ाई करनी तो कहाँ करनी कि जिसके मरने से कल्याण हो जाए उस जगह करनी। दिल्ली में रहते थे यहाँ ना रहकर वहां कर कुरुक्षेत्र में जाकर लड़ाई करेंगे, क्योंकि उस भूमि में मरने से कल्याण होता है जीव का। मारने में, युद्ध करने में भी कल्याण की बात सामने रखते हैं, उद्धार की बात सामने रखते हैं। उस संप्रदाय में आने न देना। अब इसमें क्या है, नसबंदी कर दी, क्या हो गया, गर्व रोक दे, क्या हो गया, महान अनर्थ हो गया। मैंने कल्याण कर सकते थे, ऐसे जीव आते थे, वे कहाँ जाएंगे, क्या दशा होगी उनकी, थोड़ा सा आप विचार करो। मैं अभिमान की बात नहीं करता हूँ, पर अभिमान की बात है, इस बात से क्षमा मांग लेता हूँ। आज आप और हम गीता रामायण का पाठ करें, गीता करें, सत्संग की बातें करें, रामायण का सामूहिक पाठ करें, ऐसा संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए समारोह ईसाइयों में होता है कि मुसलमानों में होता है कि यहूदियों में होता है कि पारसी में होता है, होता है तो मेरे को बताओ, मैं कहना शुरू कर दूंगा कि उसमें भी ऐसा होता है भाई, अमुक जगह होता है। सीधी सी बात, सरल सी बात है। हमारे रामायण का पाठ करना उसका उद्देश्य क्या है, हमारी टोली बढ़ाने का है, क्या धर्मांतर कर, धर्म कहाँ है, पापांतर करते हैं पाप और बढ़िया पाप बने जैसा काम करते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, नाम धर्म परिवर्तन है, नाम उसे रख दिया, कितनी आश्चर्य की बात है। आप बताओ भाई, आप जानकार हो, मैं जानकार नहीं हूं, इस बात से बताओ। कभी ऐसे ऐसे समारोह जीव के कल्याण के लिए होता है, और दूसरा हो तो आप बताओ कि रुपया इकट्ठा करने के करते हैं, कि यश प्रतिष्ठा के करते करते हैं, कि नाम बजी के लिए करते हैं, किस भोग की प्राप्ति के लिए ये समारोह आपका सत्संग का हो रहा है, अभी रामायण का पाठ होने जा रहा है, तो किस सांसारिक उन्नति के लिए, भोगों के लिए क्या हो रहा है बताओ, प्रत्यक्ष में बताओ। आप दूसरे संप्रदाय में, उस संप्रदाय में आने ही नहीं देना, जन्म नहीं देना, क्या घोर पाप नहीं है, क्या जीवों के साथ घोर अन्याय नहीं है? अब बताओ आप प्रभाव, किसी की भी उन्नति न रुके, सबका हित हो। अरिहु अनभल की नन रामो, राम जी ने, राम जी ने किसी का भी अनहित नहीं किया। अंगद को भेजा है तो जाकर कहा है काज हमारा तासु हित होई। सीता जी को ले गया, लड़ने को तैयार, मारने को तैयार, ऐसे के पास में दूध भेजते हैं तो काज हमारा काम तो वही हमारा बने, हमारी स्त्री हम ले लें, बने तासु हित होई, उसका हित करना। किस संस्कृति में बताओ, महाभारत का वीडियो देखते हैं तो कितने लोग ईसाई और मुसलमान भी, बाजार बंद हो जाएगा, बाजार कम हो जाता है उस समय में जब वो सुनते हैं तो, ऐसे मैंने सुना है, आपने देखा ही होगा, मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है। सुनने में ऐसी संस्कृति नहीं मिलती किसी की, उस संस्कृति में जन्म लेने को बंद कर देना कितना बड़ा भारी अन्याय है। अरे कहें तो नाराज होते हैं, ये बात अगर कहें तो नाराज होते हैं। तो मेरे को कोई पैसा मिलता हो, बढ़ाई मिलती हो, तिरस्कार मिलता है, हम नहीं जाएंगे स्वामी जी के, नहीं जाएंगे स्वामी की बात मानेंगे नहीं, स्वामी जी एक एक बात कहते हैं, तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती है, ये मेरे को इनाम मिलता है, ये तो निशर्मा हूं, निर्लज हूं जो आपका बात कहता हूं, नहीं तो भला आदमी क्यों कहे, क्यों कहे, हमारे क्या बाधा लगी, आप नरकों में जाओ, स्वराज लाल चुनी में जाओ, महान भयंकर नरकों में पड़ो, हम क्यों कहें बताओ, कोई आप बताओ, तुम इस स्वार्थ के आज कह रहे हो, हमारे कितना कर रहे हो, आप जानते हो जिन पापों को जानते हो, और शास्त्र कहता है हमारा पाप है, वो करते हो बड़े जोर जोर से, तो सदगति चाहते हो। मेरे को कहानियां याद ऐसी कही गई, दो जाट थे, दोनों के गाय भैंस भेड़ बकरी खूब धन है और खेती है, खूब पैदा होती है, पांच पांच सात सात बेटा जिनके हो गया, खूब बढ़ता है। तो एक स्त्री एक परिवार के साथ बैर रखती थी, उनकी घास जला देती जाकर बाड़े में, उनकी खेती नष्ट कर देती, ऐसा ऐसा हम करती, और फिर उसके बेटा और पोता और गाय भैंस खूब अच्छी तरह से। तो उसका पति कहता कि भगवान के न्याय नहीं है, ये अनिष्ट करे दूसरों का, ये पलती पूलती फैलती है, अच्छी तरह फलती है फूलती है। यूं करते करते कई वर्ष बीत गए, अब वर्ष बीतने पर बेटा मरने लगे, अब मरने लगे तो जवान अच्छा अच्छा बेटा मरे, धन भी मरे और नष्ट हुए, तो खेती में हुए नहीं, तो बोलने लगा कि परमात्मा के अंधेर नहीं है, देर है, पहले कहते अंधेर है, सपा भगवान के अंधेर है, फिर कहते अधेर नहीं है, देर है, अरे देरी नहीं है, होता भक्त पर ही। आपको आश्चर्य आवे जैसी बात है, कोई नई बात मेरे पास नहीं है, आपकी सुनी हुई है समझी हुई है, पर फिर कहता हूं आश्चर्य जैसी बात है, वन पर्व में जब पांडव रहते थे उस समय में देवी द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया है, युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया है कि महाराज आप धर्म को छोड़ करके पांव भी नहीं रखते, अनिष्ट किसी का करते नहीं, दुर्योधन को सुयोधन कहकर बोलते हैं, ये वचनवान नहीं होगा शायद, परंतु ऐसी बात करते हैं, वो तो जंगल में भटकते हो, अन्न जल नहीं आप पास, फल फूल आदि खाकर निर्वाह करते हो, और जो अन्याय अन्याय करता है वो दुर्योधन है, जो खूब मौज कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो धर्म कर्म कुछ है कि नहीं, ईश्वर कोई न्याय करता है कि नहीं है, द्रौपदी ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देवी तेरे भीतर ये पहले कैसे बात हुई, आश्चर्य की बात है, वेदी से प्रकट होने वाली महाराज, यज्ञ से प्रकट होने वाली, सात वर्षों की बच्ची पैदा हुई है, गर्भ से नहीं आई है द्रौपदी, ऐसी प्रकट होने वाली, वो कहती है युधिष्ठिर महाराज से, तो तेरे स्पर्श कैसा हुआ, जो सुख के लिए धर्म का पालन करता है, धर्म का पालन हो सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, जो धर्म का पालन करता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता, वो तो सुख सुविधा चाहता है, वो धर्म का तत्व थोड़ी जानता है, धर्म का तत्व वो जानता है जो कष्ट पाने पर धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म का महत्व है, सुख सुविधा महत्व तो हरेक में है, मैं सुख के लिए करता हूं क्या धर्म का पालन, ऐसा करता है वो धर्म के तत्व को नहीं जानता, बोलो सुख सुविधा के लिए धर्म का पालन भी नहीं करता, सुख सुविधा पाप से पाप, अन्याय से अन्याय, अत्याचार से अत्याचार करे अपनी सुख सुविधा के लिए, उनकी क्या दशा होगी, कष्ट कर देखो दोनों को कष्ट, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये उत्तर दिया उसका, देवी तेरे ये बात कैसे पैदा हो गई, ऐसी विलक्षण बात है, हर एक की शंका पैदा हो जाए कि धर्म करते हैं उनको दुख पा रहे हैं। लोग भी बहुत से कहते हैं पाप धर्म करते हैं वो दुख पा रहे हैं, पाप करते हैं वो बड़ी उन्नति कर रहे हैं, बड़े सुखी हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं। अब इनके यही दृष्टि हुई है कि सुख सुविधा हो जाए, आराम हो जाए, धनी हो जाए, ये सुख आराम रहेगा। अभी पता नहीं है, परिणाम होगा तब पता लगेगा। पर फिर रोने से रोने के सिवाय सो पर तो दुख पाए ही सुर ध्वनि ध्वनि पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर क्या फायदा होगा। पहले से चेत कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आभार है नहीं, सो पर दुख पाए ही सिर रोना के सिवाय फिर उपाय कुछ नहीं रहेगा। अभी उपाय है पापों से तो बचो, कम से कम कम से कम कम से कम जान करके महान अत्याचार महान पाप घोर भयंकर पाप तो मत करो, इसी करो ना। हम लोग जन्मे हैं उस समय में ये नहीं था कि रोटी कहाँ मिलेगी, शिक्षा कैसे होगी, क्या होगी। तो मेरी थोड़ी बने शिक्षा हुई है ना मेरी, ये बिल्कुल नहीं था वहां। हम कितने भाई बहन थे मेरे को पूरा पता नहीं, बचपन में आ गया था। परंतु छह भाई बहन थे जिनमें सबसे छोटा मैं हुआ, सबसे छोटा सबको तो मैं जानता हूं, और कितने मर गए कितने मेरे को पता नहीं, मेरे ख्याल में पूछा ही नहीं माँ से भाई कितने बाल मरे तुम्हारे, ये तो मेरे पास समाचार है पक्का। छह थे हम, तीन बहन और तीन भाई, सबसे छोटा मैं हूं। कोई ढाई वर्ष की उम्र थी तब पिता शांत हो गए, माता तो अभी पीछे शांत हुई। तो कैसे शिक्षा हुई, अरे क्या मैं मूर्ख रह गया, क्या मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, क्या मेरे को रोटी नहीं मिली है, क्या मेरे को कपड़ा नहीं मिला है, इतने बालक क्या करेंगे कैसे करेंगे। कितनी बड़ी भारी मूर्खता की बात है, आप देख लो। मेरी शिक्षा में मां बड़ा भारी शिक्षक मैं नहीं हूं, बड़ा भारी अध्यापक नहीं हूं, परंतु काम चलाऊ तो मैं हूं ही, ऐसा बन जाओ तो हर्ज क्या है आपके, ऐसा बन सकता है ना। मेरे को याद है छठा तो, और पहले कितने मर गए थे मेरे को पता नहीं है, आठ दस हुए होंगे पता नहीं हमें। मैं देखता हूँ कहूँ के ऐसे होते हैं लोग। सेठ जी ये चार भाई हुए, सेठ जी बड़े थे, मैं सबसे छोटा हूँ। तो क्या बाधा आ गई बताओ, शिक्षा में बाधा आ गई, जीने में बाधा आ गई, निरोग नहीं रोगी हो गया, क्या माँ बाप को दुख दिया, क्या कष्ट दिया है मैंने, क्या दूसरों को दुख दिया है। बिल्कुल निराधार ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर ली है, हद हो गई है। आप लोगों से हम पैदा हुए, आप लोगों से पले हैं, पलते हैं, अब भी आप लोगों से ही पलते हैं। हमारे पास क्या रोजगार है, क्या मेरे पास पैसा है, क्या धनवान है, हमारा पालन आप लोग से, माता बहनों से हमारा पालन होता है। आप लोगों के कारण से हम जी रहे हैं, अन्न मिलता है, कपड़ा मिलता है, पुस्तक मिलती है, किराया मिलता है, जगह मिलती है, हमारा कितने मकान है, कितने मेरे पास संपत्ति है, बहुत से जानते हैं, मेरे को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, पर बहुत जानते हैं हमारे पास क्या है जीविका का। बसुन वित्त में धनी जमान पान है जमा, माए लठ अठको सो मैं फिरूं घमा घमा। बसुन वित्त में धनी जमान पान है जमा, पान भी जमा नहीं है जमा, जिसमें जी रहे हैं कोई मौज है। मेरे रात मन में आई एक बड़ी भारी बात है, विलक्षण बात। लिखा हुआ देखा है कि गर्भ की परीक्षा करो, उसमें बच्चा है एक बच्ची है। मैं अक्षर पूरा नहीं जानता क्या है, पर ये भाव ये लिखा हुआ देखा है, और उसमें परीक्षा करो, परीक्षा करो तो बच्ची है तो उसको गर्भ गिरा दो, गिराने की बात हुई है। एक मैं प्रार्थना करता हूँ, जोर से भी कहता हूँ, दोनों बात है मेरी, ख्याल करो आप सुनो। संसार में स्त्रियों की मामूली दर्जा दिया और पुरुषों को बहुत बड़ा दर्जा दिया है, परंतु मातृशक्ति की जो महिमा वो पुरुष शक्ति की नहीं है। नाम लेते हो राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण पार्वती शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं पीछे पिता का नाम होता है, और पिता से 100 गुना अधिक माँ का कर्जा होता है, कई जगह 10 गुना कई जगह 100 गुना ऐसे शास्त्रों में आया है। इतना माँ का आदर होना चाहिए, तो मातृशक्ति का नाश करना, कन्या का गर्भ गिरा देना मातृशक्ति का महान घोर अपमान है। कन्या को गर्भ से गिरा देना मातृशक्ति का बड़ा घोर अपमान है, महान अपमान है, महान अपमान है। ये जितने आप भाई बहन बैठे हैं सब माँ की गोदी से आए, बाप की गोदी से नहीं आए हैं। सबका पालन माँ ने किया है, बाप ने नहीं किया है। सबका दूध माँ का पिया है, बाप का पिया नहीं है। पाला किसने किया है, प्यार कौन करती है? गाय का भी बछड़ा होता है, वैसे दूध पीता है तब माँ चाटती है, देख होती है बच्चा हिस्सुपुष्ट हो जाता है। नहीं तो गऊ का दूध पिलाओ पर माँ मर गई है तो दूसरी गाय का दूध पीने से बच्चा वैसा पुष्ट नहीं होता। तो माँ के प्यार से जो पालन होता है वो केवल दूध से नहीं होता है, माँ के स्नेह से प्यार से बच्चे का पालन होता है। ये बच्चा हो चाहे बच्चियां हो, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये सब के सब माँ की गोदी से आए हैं, माँ की कृपा से आए हैं। माँ की बड़ी भारी महिमा है, विलक्षण महिमा है माँ की। अपने सुख और सुविधा के लिए, अपने लोभ में आकर के, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मातृशक्ति का नाश करते हो, बड़ा भारी पाप करते हो जो बच्ची को गिरा देते हो। मातृशक्ति का इतना बड़े अपमान कोई हो नहीं सकता। मेरे को बताओ कोई भाई पीछे बता देना मेरे को कि भाई ये मातृशक्ति का हम आदर करते हैं, कैसे आदर हुआ? ये मातृशक्ति का निषेध किया है। नारी शक्ति नहीं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, कान देकर सुनना जरा, ध्यान देना। मातृशक्ति है, छोटी बच्ची है, गर्भ में है तो भी बच्ची वो शक्ति मातृशक्ति है। वो केवल स्त्री पुरुष कह दो, नारी है महिला है नारी है, नारी पुरुष नहीं है, मातृशक्ति है, माँ है, माँ 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 सबसे बढ़िया होती है। माँ का जो दर्जा ऊंचा सबसे, वो मातृशक्ति है। उसका गर्भ से ही निवारण कर दो, जन्म ही नहीं लेने दो माँ को, तो तुम जन्मोगे कहाँ, दूध पियोगे किसका, गोदी कहाँ से लाओगे, किस जगह प्यार पाओगे, कौन हृदय से लगाएगा आप बताओ मिजा माँ के? कितनी विचित्र बात है, माँ किस तरह से पालन करती है जिसका आश्चर्य आता है। काशी के विद्वान मदन मोहन जी महाराज जो कि यहाँ हमारे गीता प्रेस के वहाँ सभा में अध्यक्ष थे, जहाँ गीता जयंती का उत्सव होता है, जहाँ महोत्सव होता है, तो वे मदन मोहन जी महाराज कहते थे कि मैं ब्याह में गया हुआ था और वहाँ ब्याह हो रहा था, तो उसमें बहनों माताएं आई खूब श्रृंगार करके, बढ़िया से बढ़िया कपड़े का गहने पहन करके, ब्याह में जाना है, ब्याह का आदर सत्कार करना है, तो सर्व श्रृंगार की हुई बहन बैठी थी। एक बहन के गोद में छोटा बच्चा था, तो बच्चा टट्टी फिर गया, रेशमी साड़ी में बच्चा टट्टी फिर रहा है, तो कहा से बैठ गए बच्चा टट्टी ज्यादा है, अल्लाह करे बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, आने दे इनको, बोल मत चुप रहे भाई। आ है किसके दया, माँ की सिवाय बताओ किसी में दया हो तो। बढ़िया रेशमी कपड़ा खराब हो रहा है, वो चेता रही है, तो बोल मत बच्चे की टट्टी रुक जाएगी, बीमार हो जाएगा हमारे, ये टट्टी आने खुल जाने दे। मदमोहन जी महाराज कहो कि मैं ब्याह में था, ब्याह कराने के गया था, ऐसी घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है, और बहनों मानती जानती है। राम मोहन जी महाराज नहीं, उनके पिताजी कहा था, राम मोहन जी के पिताजी ने भी कहा था, मदन मोहन जी महाराज नाम था, उन्होंने कहा मैं था उस ब्याह में, मैंने देखा, तो कहते थे टट्टी फिर आएगा, उसको शब्द हुआ तो उसने बिताएगा दूध, और चुप रहे बोल मत बोल, बच्चे की टट्टी रुक जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, ऐसा सह सकता है कोई पुरुष? सह सकता है कोई, कोई पुरुष हो जाए बात एक अलग है, मैं अभाव नहीं है, सब चीजें सब जगह होती है, परंतु बहनों माताओं में स्वाभाविक बालक के प्रति जो प्यार होता है, जो बालक का पालन करती है, स्नेह करती है, बहनों क्या भाई क्या, सबके सब माँ की गोदी से आकर पले, उस मातृशक्ति का इतना अपमान, इतना तिरस्कार कि उसको गर्भ को ही गिरा दो, जन्मे मत दो। किसके जन्मों के आप, हम किस आएगा, कौन हमारा पालन करेगा, कौन रक्षा करेगा, कौन गर्भ में धारण करेगा? अगर पुरुषों की स्थिति एक समान होना चाहिए तो गर्भ को धारण करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए, समान अधिकार है, गर्भ धारण करो पुरुष भी करो, समान अधिकार है, समान अधिकार नहीं ऊंचा अधिकार है स्त्रियों का, माँ है ये माँ। हमारे मकान बहुत साधुओं के मकान भी होते हैं, धन भी होता है, सब कुछ ही, पर साधु का घर नहीं कहलाता, घर इन से कहलाता है। न गृह गृह में गृहिणी गृह मुच्यते, घर का नाम घर नहीं, घर नाम स्त्री का है। वो नथ खरीदता है, लहंगा खरीदता है कि यार नथ पहन दो, नहीं नहीं मेरे घर में चाहिए, घर में घर है खास घर, ये गृह गृह लक्ष्मी है। बहू आती तो बहन माता कहती बहू रानी आएगी, बहू रानी, अब रानी वो है, राजा वो है, आप तो थोड़ा दिन इनकी सिखाओ करो, शिक्षा करो, अच्छी तरह से रक्षा करो, आप अब नहीं है, अब रानी राजा रानी जो हो गए हैं, अब इतना आदर हमारे यहाँ परिवार में है। ऐसी उसी का तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना, बड़ा भारी घोर अपमान है, गर्भ गिरा दिया उसका। देखो स्त्रियों का ब्याह होने में, कन्याओं का ब्याह होने में कठिनता पड़ती थी और अब भी कठिनता है, और दहेज बहुत देना पड़ता है, तो ये अपराध बच्चे के माँ बाप का है, ये बच्ची के माँ बाप का नहीं है, उनके थोड़े ही है, लेते ही नहीं अब। और अब देखो ये जो बच्ची का गिराना हुआ है, अब ब्याह एक, मैंने एक सज्जन सुनाया कि मेरे पिता मेरे भाई बड़े भाई ने ब्याह किया तो रुपया दे करके ब्याह किया, और ये ऐसी चल चलेगी तो ब्याह कहाँ करोगे आप बताओ, कैसे आपका गृह चलेगा, भाई रुपया देना पड़ेगा। अरे मैंने देखा, मेरे को याद है अभी बचपन की बात है, उस समय में बनियों की जब लड़की जन्मती तो कैसे थैली आई है रुपयों की थैली, आज कहते हैं भट आया है, ये मेरे देख दोनों बात देखी हुई है, मेरी सुनी हुई केवल नहीं है, देखी हुई है। रुपया लगता था उस समय, इस बात से कहते हैं कि थैली आई है, रुपयों की थैली आएगी, बेटी आई है, अब रुपया आएगा ज्यादा, अरे वही दशा इसमें हो जाएगी, अगर ये चाल चली तो अगर यही दशा होगी ब्याह कहाँ करोगे, अब बच्ची को तो घर से गिरा दो। बात करते बड़ी आश्चर्य की कि लोग धन क्या अन्न कैसे खाएंगे, घने आदमी हो जाएंगे तो अन्न कैसे होगा, तो अन्न कोई इतना ही पहले रखा है उतना ही अन्न है, अन्न भी पैदा होता है, जहाँ वृक्षावली ज्यादा होती है वहां वर्षा अधिक होती है, तो मनुष्य अधिक हो गया अन्न पैदा नहीं होगा। आज अकाल क्यों पड़ता है ज्यादा, अकाल पड़ता है इस वास्ते कि अंडा खाओ, पशुओं को खाओ, मछली खाओ, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए तो पशु खाने के वास्ते पशु हो गए, यार तुम पशुओं को खाने वाले हो गए तो तुम्हारे तो अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को घास की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है वर्षा की, वर्षा के बिना क्या बटेगा, वर्षा के बिना अन्न नहीं होगा, घास नहीं होगा, तो घास वाले खाने वाले तुम खा जाओगे, तो उनके लिए तो घास की जरूरत नहीं, बेचारा खत्म हो जाएगा, गाय खत्म हो रही है, घास की जरूरत क्या है, इस वास्ते घास वाला नहीं होता, और खा जाते हो आप तो आपके अन्न पैदा जरूरत नहीं, अन्न की पशुओं खाओ, ऐसे घोर पापों से आज अकाल पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले अकाल पड़ा था 56 का संबंध बड़ा भयंकर काल हुआ था, पहले चुड़ियों पच पुड़ियो 25 हो 34 हो चुड़ियो 48 हो भी अंतर आकुलियो, पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले कालोरा दादो जी आया, सपने सपने कितनी विशेष बात कही, काको भक्ति जो साथे धन काटो घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाने जो साथे धन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फुलको रो फोड़ो, ऐसी दशा हुई संबत सपन में। 12 शेर की कणक बिकती है, और बिकते थे गेहूं 12 शेर के, आज मार जीवों को मार देना, खेती में मार देना, टीडी को भी मार देना, चूहों को भी मार देना, पक्षियों को भी मार देना, सुगर को तोतों को मार देना, इन मारने से और जीव जंतु बारीक उनको भी मार देना, जब खेती ज्यादा हो जाएगी, अन्न क्या भाव हुआ है, कोई मार देने का ये ठीक होता है क्या, नतीजा हिंसा का नतीजा होगा, वो होगा बड़ा भयंकर होगा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, गर्भ गिराओ आप लोग, कितने पाप है, भ्रूण हत्या, यह पापम ब्रह्म हत्याया दुगुण गर्भपात, ने जो ब्रह्म हत्या चार महापाप बताए हत्याओं में ब्रह्म हत्या, जो अच्छे विद्वान है पंडित है जिन धर्म का पालन करते हैं उपदेश देते हैं ऐसे ब्राह्मण की हत्या करना महान पाप है, मनुष्य मात्र की हत्या बड़ा भारी पाप है, परंतु ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे परस्त्री गमन पाप है, पर गुरु पत्नी गमन है महान पाप है, महान पाप, मां से भी बढ़कर पूजनीय गुरु पत्नी होती है। ऐसे भक्षण करने में मांस मदिरा मांस आदि सब पाप है, पर मदिरापान महापाप है, इसके समान कोई पाप नहीं है। मैंने ये बात पूछी है संतों से कि महापाप क्यों है, भी मदिरा में क्या बात है, कि मदिरा है वो एक तो संपूर्ण जीवों का अर्क है, महुआ और दाखान सड़ा करके जीव पैदा करते हैं, लाखों करोड़ों अरबों जीव होते हैं, उनको यंत्र में चढ़ा करके रस निकाला जाता है, मदिरा बनाया जाता है भबके से, तो उसमें उम्र होती है इंसान। और बहुत बड़ा भारी अवगुण यह है कि मनुष्य के भीतर धर्म के एक परमाणु है, धर्म का संस्कार है, वो बीज नष्ट हो जाता है, धार्मिक पारमार्थिक बीज नहीं रहता। मध्य पे तत्व चिंता के नंग सोचाऊंगा पंचतंत्र में आया है, मध्य पे मध्य पाने करने वाले की बुद्धि ठीक नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मदिरा पीने वाले का 3 वर्ष संग करे और मदिरा न पिए तो जो मदिरा पाने वाले का दंड होता है वही दंड साथी को होता है, इतना बड़ा भारी मदिरा पान में पाप बताया है, वो मदिरा का प्रचार कर रहे हैं। ध्यान दें आप लोग, और सोने की चोरी मात्र पाप है, मैं सोने चांदा सोना है रतन है इनकी चोरी है वो महापाप है, ये महापाप बताए हैं। तो ब्रह्म हत्या का महापाप होता है, ब्रह्म हत्या के समान है। तो यह पाप ब्रह्म हत्या या ब्रह्म हत्या का जो पाप है दुगुण गर्भपात है, गर्भपात करने का दुगुणा पाप होता है, ब्रह्म हत्या से दुगुणा पाप लगता है। पराशर स्मृति में लिखा है प्रायश्चित न तस्यास्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है, तस्यास त्यागो विधीयते, चाहिए ऐसी स्त्री हो गर्भपात करने उसका त्याग कर देना चाहिए, स्त्री को स्त्री नहीं मानना चाहिए, ऐसा पराशर स्मृति में लिखा है। मैं नहीं कहता हूँ, कैस कबीर मैं कैसा डरू, मैंने गोरख कैसे इसका मैं क्या करूं, अब मिलेगा मैं बताऊं क्या बताऊं, और मैं लिखा है सतीश ने लिखा है। इस तरह से नारी जाति का अपमान करना, मैं नारी जाति का नहीं कहता हूं, मैं मातृशक्ति कहता हूं, मातृशक्ति का नाश करना अपमान करना कितना बड़ा भारी अपराध है, और गर्भपात करना अपराध है, जिसमें भी नारी जाति का फेर भीतों पर दीवारों पर बोर्ड पर लिखा हुआ लोगों ने देखा होगा, ऐसी बात है कि बताओ परीक्षा करो, परीक्षा के इसमें लड़का है कि लड़की है, कितना घोर अपमान है। तो भाई महान पापों से तो बचो, नहीं तो दशा क्या होगी, पाप का फल भोगना पड़ेगा, बच सकते नहीं। देखो एक कानून की बात बताऊं, जो पुरुष जल का निरंतर नाश करता है, टूटी खोल दी जल देता है, उसको जल के बिना प्यासा मरने पड़ेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, बिना जल के प्यासा मरना पड़ेगा। जो नौकर अच्छा मालिक है उसका त्याग करता है, अपमान करता है, नौकरी ठीक नहीं करता, घर नहीं बजाता, उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और अच्छा नौकर है उसका तिरस्कार करते हो, उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। कोई संत महात्मा मिले उनका आदर न तिरस्कार करते और बात नहीं मानते, अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। जो आप मिले मनुष्य शरीर उसका काम नहीं लोगे ठीक तरह से, तो आपको पीछे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जिन जिन चीजों का आप तिरस्कार अपमान करते हो वो मिलेगा नहीं, ऐसे मनुष्य शरीर का तिरस्कार करे हो, गर्भपात करते हो, अगर बच्चा पैदा नहीं होगा। मेरे पास कई बहन आती है कि हमारे बच्चा नहीं है, भाई हमारे को तो आता नहीं, हमारे सिद्धि है नहीं, किसी को बेटा दे दू, मैं तो भूख लगे उसे अतारे गोल से रोटी खाऊंगा, मेरे पास क्या है, बेटा दे दूंगा रोटी तो खाऊंगा ही नहीं घर में, और बेटा दे देंगे, भोली है बेचारी समझते नहीं, समझ बाबा जी है बेच देंगे, बाबा जी के पास है क्या चंद्र गोपाल, बाबा जी चाहते छोपा। तो वे चाहती है, कई बहन कहती है हमारे महाराज क्या करें, हमारे पोता नहीं है, मेरे पोता नहीं है, मेरे बेटा नहीं है, इतना वर्ष हो गया हमारा संतान नहीं हुआ। ऐसे मेरे सामने आती है बहना, इनका हृदय सीधा है सरल है, तो मेरे से पूछते हैं बाबा जी कुछ कह देंगे, आप वचन दे दो, आप वचन छोड़ दो, वचन झूठा कैसे छोड़ दो, मेरे में ताकत है ही नहीं, रुपया दे रहे दुकानदार को लाशा कपड़ा दो, रुपया तो दे रहे दुकान कपड़ा तो नहीं है, तो रुपया क्यों लिया, तुमने क्यों कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, बच्चा देने की ताकत है ही नहीं, हाँ तेरे बेटा बेटा हो जाएगा, कैसे कह दिया, है देने की तुम्हारी ताकत है, घर में है ऐसी दुकान में है वो कपड़ा, कि वो तो हमारे नहीं है, तो कैसे कह दिया तेरे बेटा हो जाएगा। ये तो बेचारी बोली ये समझे कि महाराज है ना, बड़ी भाई दुकान है, संत महात्मा है, वचन सिद्ध है, वचन सिद्ध हो जाएगा, ये तो मान लेते हैं, आप भाई भी मान लेते हो, मैं तो मानता हूँ कि मेरी दुकान में कितना कमाल है, मैं भी ठगे मान जाऊँ ऐसे, भाई हमारे में कोई ताकत नहीं है, कोई भाई तुम वैद्यों को पूछो, डॉक्टर को पूछो, किस में दोष है, स्त्री में दोष है, पुरुष में दोष है, वो दोष कैसे दूर हुए, तो वैद्यों से डॉक्टर से पूछे, दवाई दो कोई, उस जंत्र मंत्र कराओ। हम ना जंत्र मंत्र दांतरा डोरा मेरे को आता नहीं, चंद्र सभा में बुरी लगेगी बात, ऐसी आई है संता में, जंत्र मंत्र दांतरा डोरा तांत्रिक डोरा अंतर लखन भोपेगा साधु होकर सुगुल मरा काला मुंडा डोफेगा। तो जंत्र मंत्र करना कोई साधु का अच्छा काम नहीं है, बढ़िया नहीं है काम, हम जानते भी नहीं, हमारी बातें भी नहीं, संतों की कृपा से हो जाए ये बात सच्ची है, पहले बात हुई है ऐसी, ऐसी बात हुई है, आ बात मैं जानता हूँ मानता हूँ, मेरी श्रद्धा है, पर श्रद्धा है वे संत महात्मा उस तरह के होते हैं, वे कभी कह दे तो हो जाएगा, उसे कह दे तो जू कह रही हो, सांप और वरदान की कई कथाएं आती है, अरे दुर्योधन ने माँ से आशीर्वाद मांगा, माँ गांधारी ने माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया विजय का, महाभारत पढ़ करके आप देखो कई मैंने जाकर चरणों में गिरा नमस्कार किया कि माँ तुम आशीर्वाद दे दो विजय हो, बेटा विजय तो धर्म की होगी कि माँ तू आशीर्वाद दे दे, कैसे आशीर्वाद दे दो, कितनी गांधारी विलक्षण माँ है, बेटा मांग रहा आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं देती, कैसे दे दू, धर्म मेरी विजय हो, विजय धर्म की होगी। तो भाई अच्छी चीज का तिरस्कार करता है उसको अच्छी चीज नहीं मिलती, अन्न का तिरस्कार करते हैं उनको अन्न के बिना भूखा मरना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया मिठाई है कार छूटन झूठन छोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो आपको अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, इस दिन में हो जाएगा नहीं तो पड़े तीसरे दिन में होगा, पर अन्न बिना कुत्ते की तरह भूखा मरना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि हम अन्न का नाश किया है, जिस किसी के नाश करते हो तो उसके कैसे मिलेगी आपको, जो ऐसे संत मिल जाए, अगर आप नहीं बात मानो तो अगर ये अच्छे संत मिलेंगे नहीं, मनुष्य बन जाओ तो भी संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने तिरस्कार किया है, अगर आदर करोगे तो ऊंचे ऊंचे संत मिल जाए, बढ़िया की दुकान कपड़े की है, ध्यान देकर सुनना, और हम जाए गए कपड़ा लेने के लिए, उसने कपड़ा बताया कि ये कपड़ा है, कि इनसे बढ़िया दूजा बढ़ाएगा, ये बढ़िया, अच्छा चार थान रख दो यहाँ पर, इनसे भी बढ़िया, कहाँ इनसे बढ़िया है, ये देखो इससे बढ़िया है, छह थान ये रख दो, इनसे बढ़िया है, हाँ लाए तो आठ थान ये रख दो, दुकानदार की ये ताकत है कि कपड़ा बचा कर रखेगा, जो बढ़िया बताओ जो ज्यादा खरीदा, चार दे दो, छह दे दो, आठ दे दो, दस दे दो, दुकान में बढ़िया कपड़ा रह नहीं सकता, ऐसे ही आप आशीर्वाद चाहते हो तो उनकी सेवा करो, आज्ञा पालन करो, और ठीक तरह से तो उनकी वहां रहने वाला कोई ऐसा है नहीं पदार्थ जो आपको ना मिले, मारवाड़ी का देरे पांड्या आशीष, पांडे से कहा कि महाराज पांड्या आशीर्वाद दो, कि मैं क्या दू आंतरा देसी भोजन का आंतरा देसी यू मिल जाए सफाई, बेटा दे दो मैंने, धन दे दो मैंने, यूं कर दोगे आप, वजन छोड़ दोगे जो, तो भाई दोनों में योग्यता चाहिए, पारस कह रहा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कह तो पारस नहीं कहा बीच रहा बिछोहा, पारस के सोया सा लोहा सोना बना नहीं, कहा तो लोहा लोहा असली नहीं है, कहता लोहा नहीं कहा पारस पारस नहीं है, ऐसा कोई पत्नी के ढीला ने बिना वो लोहा से तो बन जाएगा पारस, सोना बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, वो सुनाई थी ना बात यार, तुम्हें खतराणी मैं हूँ, मैं तुम पांडी हो, तुम्हें खतराणी समझे, तू खतराणी तो मैं पांडी हो, अरे तू बेच तो मैं भांड, थारे जी मैं मारे जी कोई पत्थर पड़ से रान, तू तो चाहे कि मैं बीमार आवे, और मांस में मिल गया, दोनों मिल गया ठीक तरह से, पात्र पात्र दोनों मिल गया, एक मांस लेगा, इस तरह से आप चाहोगे हमारे बेटे हो जाए, ये हो जाए, तो हत्या मत करो, गर्भपात मत करो, नहीं तो रोग संतान होगा नहीं। एक अच्छे संत की महात्मा की बात बताऊं आपको, नाम नहीं बताता हूं, तो उनके किसी ने पूछा कि इसके संतान नहीं हुआ, कि इसने दूसरे बालक को मार दिया, हत्या करी है पहले जन्म में, इस वजह से बालक नहीं होगा, जन्म भर नहीं हुआ, ये मैं जानता हूं, बताता नहीं हुआ, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, तो गर्भपात करे फिर जाए कि मारे बच्चा होगा, कि अभी तो होते हैं, ऐसे करने वाले होते हैं तो होते हैं, तो पूरे जन्म का अभी हो रहा है, अभी किया होगा फल अगले जन्म में होगा, खेती गए साल की है उसके अन्न खाते हो और खेती नहीं करते हो अगाड़ी, तो अगाड़ी क्या खाओगे, ये तो पूर्व जन्म का फल है, इस वास्ते अभी आप पाप करोगे तो अगाड़ी बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। बंद कर संतान को तुम क्यों निपुती हो रही। बंद कर संतान को तुम क्यों निपुती हो रही। गर्भपात कराय के तुम डाकिनी क्यों बन रही। गर्भपात कराय के तुम डाकिनी क्यों बन रही। खा रही बच्चों को खुद ही अपन आपा खो रही। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। है भयंकर पाप इसका, ब्रह्म हत्या से बड़ा। है भयंकर पाप इसका, ब्रह्म हत्या से बड़ा। दुर्गति होगी तुम्हारी, पाप सिर क्यों ढो रही। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। छोड़ सुख आराम हिंदू वंश की रक्षा करो। छोड़ सुख आराम हिंदू वंश की रक्षा करो। अन्न जल भगवान देते बात सची यह सही। अन्न जल भगवान देते बात सची यह सही। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। पंस अपना नाश कर तू क्यों निपुती हो रही।